तो जैसा कि आप लोगों ज्ञात है कि कल जो है राधाष्टमी है, सबसे बड़ा हमारा पर्व राधाष्टमी है। वैसे जन्माष्टमी भी हम लोग मनाते हैं, बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी जो है कृष्ण जन्माष्टमी है वो ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो गौड़ीय वैष्णव के लिए राधाष्टमी सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो शिव जी के भक्त होते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं, दुर्गा जी के भक्तों को शिव जी के भक्तों को शैव कहते हैं, दुर्गा जी के भक्तों को शाक्त कहते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं उसे काष्णेय कहते हैं, और जो राधारानी के भक्त होते हैं उन्हें गौड़िया कहते हैं। तो हम लोग गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं, और सो हम लोग श्रीमती राधा रानी के ही मेन भक्त हैं। तो हमारे जितनी भी परंपरा में हैं ये सब जो हैं राधा रानी के ही भक्त हैं। तो कृष्ण की करते हैं सेवा इसलिए क्योंकि राधा रानी उनकी सेवा करती हैं। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने बोला कि अगर आप अपने आप को गौड़िया वैष्णव कहते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत क्यों का लिखा हुआ है, क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय श्री राधा भावना भावित होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला क्योंकि राधा रानी कृष्ण कृष्ण करती हैं, है इसलिए हमने कृष्ण भावना भावित लिखा है, राधा रानी कृष्ण कृष्ण करती हैं। तो हम लोग जो है वैसे तो कल जो लेक्चर देने वाले होंगे वो राधा रानी का जो आविर्भाव है कैसे हुआ कहाँ हुआ वो बताएंगे, हम थोड़ा ये राधा तत्व की ओर जाएंगे। तो कुछ बातें ऐसे होंगी जो यहाँ पर कुछ नए लोग होंगे शायद वो समझ ना पाए, नहीं समझ पाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, आपको श्रुति फल मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं शोर, हालांकि जो है राधा रानी के बारे में बोलना तो एक समुद्र के समान है, लेकिन हम लोग उस समुद्र के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रवेश मात्र करेंगे, थोड़ा सा पैर मात्र रखेंगे, ठीक है, उस समुद्र में। तो राधा वास्तव में राधा रानी, राधा शब्द जो है इसका बहुत सारे अर्थ हैं। एक यह अर्थ है कि राधा यानी कि जो रास, राधा मतलब रास, रास मंडल, और धा मतलब धावती, तो जो रास मंडल की ओर दौड़ती हैं उन्हें राधा कहते हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो उन्हें राधा कहते हैं। और दूसरा अर्थ है रा, कृष्ण जब रा बोलते हैं तो वो रोने लगते हैं, और जब धा बोलते हैं तो उनकी धारा बहने लगती है, इसलिए भी उनका नाम राधा है। तो एक बात जो है ब्रह्मा जी जो है वो वृक्षों की सृष्टि कर रहे थे, वृक्ष की पेड़ों की सृष्टि कर रहे थे। तो उस समय जो है उन्होंने अचानक उनके ध्यान में कृष्ण आए, वो कृष्ण का ध्यान करने लगे, और ध्यान में जो है कृष्ण को किया तो कृष्ण उनके ध्यान में आए और कृष्ण उनके ध्यान में दर्शन दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो अश्रु बात कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं ध्यान में, और वो सोच रहे हैं क्योंकि मैं इस समय वृक्षों की सृष्टि कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है ये वृक्ष को कृष्ण के कलर का बना दूंगा। ऐसा सोच ही रहे थे अचानक श्रीमती राधा रानी आ गई, और राधा रानी जो है कृष्ण जो है राधा रानी को आलिंगन करते हैं, तो राधा कृष्ण जो है क्या हो जाते हैं, डीप प्रेम में चले जाते हैं। अगर डीप आलिंगन हो जाता है तो राधा कृष्ण एक हो जाते हैं, ये जो है केवल आध्यात्मिक जगत में हो सकता है, भौतिक जगत में जैसे बोलते हैं मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ, ये संभव नहीं है, कोई किसी में समा थोड़ी सकता है, घुस थोड़ी जाएगा अंदर, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब संभव है। तो राधा कृष्ण जो है डीप जब मिलन में चले जाते हैं तो एक जैसे हो जाते हैं। तो कृष्ण का कलर कैसा है, डार्क ब्लू की तरह है, अगर डार्क ब्लू जाता है तो काले की तरह ही लगता है, इसलिए लोग शाम बड़गा भी कह देते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि ये कलर भी नहीं है वास्तव में, अभी आप इतना समझ लो हैं। तो डार्क ब्लू की तरह है, तो ब्लू कलर और गोल्डन कलर जब दोनों मिल जाते हैं आपस में तो ग्रीन कलर हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जितने भी वृक्ष हैं उनको ग्रीन कलर का कर दिया, इतने आप इतने पत्ते हैं ये सब ग्रीन कलर के हैं। तो यानी कि अगर आप राधा कृष्ण का चिंतन करना चाहते हैं तो वृक्षों को देखकर भी राधा कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं, कि ये वृक्ष जो हैं ये पत्ते हैं ग्रीन पत्ते हैं ये वास्तव में राधा कृष्ण का मिलन है। तो ये है। तो वैसे तो चेतन चेतावन में एक प्यार आता है, उसमें क्या कहते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, कि कृष्ण ही एक मात्र कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं, बाकी सब क्या हैं, सेवक हैं, दास हैं। परंतु कुछ आचार्य हैं जो कि राधा रानी के गौड़ीय वैष्णव हैं, उन्होंने क्या लिखा है, एकले ईश्वर राधा आर सब भृत, कि केवल एक ईश्वरी हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं और सब भृत हैं, सब सेवक हैं, यानी कि कृष्ण भी उनकी सेवा करते हैं। तो जो अखिल ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन जब राधा रानी को देखते हैं पूरा ब्रह्मांड जो है उसको वो आकर्षित कर देते हैं अपने सौंदर्य माधुर्य से। जैसा कि हमने बताया कि कृष्ण का कलर कैसा है, डार्क ब्लू की तरह। लेकिन एक आचार्य ने लिखा है कि ये कैसे संभव है, कृष्ण के जो श्री विग्रह है वो एक जगमगाता हुआ, एक जैसे शरीर होता है ना जगमगाती हुई कोई वस्तु है, उसमें से कई कलर निकल रहे हैं, ऐसा उनका शरीर है। तो कितने लावण्य निकलते हैं उसमें से, 1 करोड़ लावण्य निकलते हैं कृष्ण के शरीर से, 1 करोड़ लावण्य निकलते हैं, 1 करोड़ अलग अलग प्रकाश निकलते हैं, और वो जो प्रकाश है वो भी कृष्ण है, वो लावण्य भी सारे कृष्ण है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो उनका कलर डार्क ब्लू की तरह है। तो इतना जो है कृष्ण इतने सुंदर हैं, लेकिन जब राधा रानी के सामने आते हैं तो क्या होता है, उनके चित्त की चोरी जाती है, जो कि अखिल ब्रह्मांड का नायक है, उसके भी चित्त की चोरी हो जाती है। ये वास्तव में कृष्ण का ही अरेंजमेंट है, अगर एक दृष्टि से देखें तो कृष्ण ही ऐसा चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही क्या करा है, अपने वाम अंग से राधा रानी को प्रकट किया है। तो राधा कृष्ण असल एक ही हैं, लेकिन लीला के लिए उन्होंने 2 हो गए, अपनी आत्मा को ही एक रूप दिया है, वो है श्रीमती राधा रानी, ऐसा कह सकते हैं। आत्मा जो है वो स्त्री होती है, उसका जो है प्रकृति है, आत्मा प्रकृति है, प्रकृति का जो है क्या है, वो रूप स्त्री का ही है। इसलिए अगर गीता में भगवान क्या बोलते हैं, आत्मा न मरती है न मारती है, कहीं लिखा है न मरता है न मारता है, यानी कि वो प्रकृति है, स्त्री है। और भोक्ता जो है यानी कि पुरुष जो है वो कृष्ण है। तो उन्होंने उसको अपनी आत्मा को एक रूप दिया, वो है श्रीमती राधा रानी। तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना होगा, ये एक बेस है, कहीं पे हम लोग अगर थोड़ा सा ऐसी कोई डीप चीज आए तो हम लोग भ्रमित ना हो कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसा भगवान है, कि एक स्त्री स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो उनके शरीर का एक पार्ट है, जैसे ये मेरा हाथ मेरे शरीर का पार्ट है, अगर इस हाथ को मैं चूम लेता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी समस्या आ गया, मेरा ही तो हाथ है ना। तो उसी तरीके से ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि राधा कृष्ण एक ही हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से वो 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो वृंदावन में अब जैसे चित्त की चोरी यहां बताया कि कैसे हो, तो वृंदावन में मोर होते हैं, मोरों की आवाज कैसे होती है आप कोई जानते हैं, निकाल सकता कोई, नहीं निकाल सकता ना, कोई नहीं निकाल सकता, मैं भी निकाल नहीं सकता लेकिन ऐसा आचार्य ने बताया है कि वो लोग के का ऐसे करते हैं, मोरों की आवाज आती है। तो उसका अर्थ क्या है, मोर क्या कहना चाहते हैं, तो एक के का मतलब होता है कौन है, ये है ये पुरुष लिंग है, और का मतलब का अर्थ भी है कौन है, ये स्त्रीलिंग है। तो मोर कहना चाहते हैं के मतलब कौन है, हमारे कृष्ण जैसा, कि जो राधा रानी जैसे हैं, जो कि परम सतित्व है, सती हैं, उनके सतित्व को भंग कर देते हैं। कौन है ऐसा है कृष्ण जैसा? और फिर जब कहा कहते हैं तो राधा रानी के पक्ष में बोलते हैं कि कौन है ऐसा राधा रानी जैसा कि कृष्ण जैसे मदमस्त हाथी को भी अंकुश लगा देती हैं। अगर आप राधा रानी के चरणों का चिन्ह देखेंगे तो उनके चरणों के चिन्ह में एक अंकुश होता है। तो अंकुश किस लिए होता है? कृष्ण जैसे मदमस्त हाथी को, जो कि क्या करते हैं, कई जो हैं वो गोपियों से क्या करते हैं, वो विहार करते हैं, लेकिन राधा रानी जो है उनको भी अपने अधीन कर लेती है, उस मदमस्त हाथी को भी क्या करती है, अंकुश लगा देती है। तो इस तरीके से जो है वो कृष्ण का जो है वो चोरी कर लेती है। श्रीमद् आप देखते हैं, हम लोग कई बार बाहर जो लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु के 1000 नाम होते हैं, उसमें अपने बच्चों के भी नाम रखते हैं और गोपाल के भी सहस्त्र नाम होते हैं, 1000 नाम होते हैं तो उसमें रखते हैं। लेकिन राधा रानी ने एक नाम दिया है कृष्ण को, वो क्या है, धूत प्रवर, धूतों में सर्वश्रेष्ठ। तो जो राधा रानी विरह में होती हैं तो क्या करते हैं, ऐसी उपाधियां देती हैं कृष्ण को। राधा रानी जब विरह में होती हैं तो वो इतना विरह में हो जाती हैं कि जब राधा रानी को मालूम पड़ता है कि कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं या फिर लेट हो रहे हैं, तो राधा रानी का शरीर इतना तप जाता है, इतना तप्त हो जाता है कि वो बिस्तर पर अगर लेटती हैं तो बिस्तर जल जाता है, इतना तप्त हो जाता है। लेकिन जब मालूम होता है कि कृष्ण आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो इतना प्रसन्न होती हैं, इतना प्रसन्न होती हैं, कृष्ण को बना कुछ खिलाने के लिए, कुछ बनाने के जाती हैं और जब चूल्हा जलाती हैं तो चूल्हा भी जलता नहीं है क्योंकि उनका शरीर इतना ठंडा होता है। तो ये उनकी विरह की और मिलन की दशा है। तो फिर वो राधा रानी का नाम देती हैं धूर्त प्रवर, क्योंकि ये धूर्तों में श्रेष्ठ कैसे हैं, जब रासलीला के समय ये गोपियों से छिप जाते हैं और जब प्रकट होते हैं देखते हैं कि गोपियां कैसे जो है विरह में तड़प रही हैं हमारे, तभी प्रकट होते हैं और बोलते हैं ना पा रहे हम, हे गोपियों तुम्हारा जो है मैं कभी एहसान नहीं चुका सकता, अगर ब्रह्मा जी की भी अगर मुझे उम्र मिल जाए तो भी मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता, तुम लोगों ने मेरे इतना प्रेम रखा है। लेकिन जब इसने कहा ना ऐसा, उसके दो दिन मैंने भाग गया, दो दिन मैंने बाद भाग गया। ये देखो उसका वचन धूर्त है, तो मथुरा चला गया, हम लोगों को विरह में छोड़ के चला गया। तो ऐसे व्यक्ति की बात भी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। ये देखो सुखदेव गोस्वामी हैं, नारद मुनि हैं, इसको चढ़ाने वाले यही लोग हैं। अरे अगर कोई काम कर रहा हो, और वो लक्ष्मी देखो वो बेलबन में तपस्या कर रही है, कितनी मूर्ख है। अरे अगर कोई काम कर रहा हो है, कोई बिजनेस अगर मान लो कर रहा हो, तो पहले उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जो उस बिजनेस में दक्ष है, उसके पास जाना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मुझे क्या लाभ होगा, मुझे कैसे क्या हानियाँ होंगी, और मुझे बिजनेस कहाँ पे करना चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, उससे पूछना चाहिए ना जो दक्ष व्यक्ति है। तो लक्ष्मी जी को पहले हमसे पूछना चाहिए किसका क्या स्वभाव है, जाके बेलवन में बैठ के तपस्या कर रही है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। अरे नारायण के साथ संतुष्ट रहो, जो भी इसका भक्त बनेगा वो रोएगा, मैं तो सबको सलाह देती हूँ कोई इसका भक्त मत बनो, ये सब जो है ये नारद मुनि है ना, ये नारद मुनि है, सुखदेव गोस्वामी है, वेद व्यास है, इन्होंने सब चढ़ा के रखा हुआ है। अरे एक एक शब्द बोलना था, एक शब्द बोलना था, कृष्णस्तु परम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है, उसके लिए 18,000 श्लोक बोलने की जरूरत है, एक ही तो बात है, ये तो स्थापित करना है कृष्ण परम भगवान है तो उसके लिए 18,000 श्लोक की जरूरत है, पूरा भागवतम लिख डाला और ये पोथी अपने बगल में दबा के चलते रहते हैं और लोगों को भड़काते हैं, और हकी तुम भी जो है भक्त बनो, गोपी बनो। अरे गोपी क्या बने, हम जब गोपी बनी हमें हमसे पूछे ना क्या परेशानी होती है। तो इतना दूर था। तो इस तरीके से जो है राधा रानी जो है ग्रह में होती है, वो कुछ भी बोलती रहती है। हाँ, ऐसे व्यक्ति का जो है हम उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। आप छोड़ो इस बात को, कोई अन्य चर्चा करो। तो वहां पर आचार्य लोग लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि अन्य भी एक कृष्ण का ही नाम है। यानी कि इतना इन्हें मुझे सताया है, इतना ये धूल परिवार है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा करो, राधा रानी ये कहना चाहती। तो जो है जब ये ब्रह्म होती हैं राधा रानी, तो कुछ भी करते रहते हैं। तो इसलिए जो है इन्होंने इनका नाम दिया है एक धूर्त परिवार। तो ये जो है प्रेम राज में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ये ना सोचें कि हम लोग कृष्ण की कृष्ण को नीचा कर रहे हैं, राधा रानी को ऊंचा कर रहे हैं, ये सब प्रेम राज की बातें हैं। यहाँ पर हमारे मन में कोई ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैसे साधारणतः हम लोग बोलते नहीं हैं ऐसा कुछ। लेकिन जब ऐसे फेस्टिवल होते हैं, राधाअष्टमी हो गए या राधा कुंड प्राकट दिवस होता है, तो फिर ऐसी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो कृष्ण जो है राधा रानी के क्या उन दासियों के भी सेवक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दासियां जो हैं वो राधा रानी को दे सकती हैं। एक बार एक बाबा जी थे, तो हमेशा जो है राधा रानी के चिंतन में बैठे रहते थे। ज्यादा दूर की बात नहीं, अभी 50-60 साल की बात होगी। तो हमेशा राधा रानी के चिंतन में रहते थे। पहले तो वो कृष्ण भक्त थे, तो फिर कृष्ण भक्त हुआ करते थे और कृष्ण के विरह में रहा करते थे। तो फिर एक बार जो है कृष्ण के बहुत विरह में थे, तो उन्होंने देखा, उनके गुरु ने देखा कि अरे ये तो लगता है प्राण छोड़ देगा। तो उन्होंने बोला कि तुम कृष्ण से मिलना चाहते हो? हाँ, मैं कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ, चलो मेरे पास। तो उन्होंने क्या करा, अपने सखी रूप में उसको राधा रानी के पास ले गए। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा शिष्य है और ये कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, लेकिन कृष्ण जो है इसको दर्शन नहीं देते हैं और ये दिन रात रोता रहता है, ना खाता है ना कुछ पीता है, कितना कमजोर हो गया है। तो राधा रानी ने बोला, अरे मेरे प्यारे के प्रति तुम्हारा इतना प्रेम है, तो बहुत प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने क्या करा, उनको एक चादर दी। उन्होंने बोला ये चादर ओढ़ो और जाओ, अब कृष्ण कृष्ण करो जाके। जब उन्होंने और जब वो कृष्ण कृष्ण करने लगे, तो कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए, कृष्ण ने तुरंत दर्शन दिया। तब से जो है उन्होंने देखा कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं राधा रानी की शरण लेता हूँ तो कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तब से वो जो है वो राधा रानी के भक्त बन गए। तो फिर एक बार जो है राधा रानी के विरह में वो बहुत व्याकुल हो रहे थे, अचानक एक भक्त आया, एक ऐसे साधारण भक्त आया, तो वो राधा कृष्ण के विग्रह लेके आए। तो विग्रह लेके उनके बाबा जी के सामने रख दिए। तो जब बाबा जी के सामने रखे, तो बाबा जी विरह कातर हो गए और आंखों से अश्रु धारा बह रही है, उनको इतना अश्रु धारा बह रहा है कि उनको विग्रह दिखाई नहीं दे और वह बेसुध हो गए। तब कृष्ण बोलते हैं राधा रानी को, अरे ये बाबा जी के चक्कर में तुम कहाँ फंस गए हो, चलो यहाँ से, ये लगता है हमें भूखा ही मार देगा, ये तो ऐसे बेसुध पड़ा रहता है, रोता रहेगा, व्याकुल होता रहेगा और हम लोग भूखे मर जाएंगे, चलो मेरे साथ। राधा रानी कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा परम भक्त है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। कृष्ण जो है हाथ पकड़ते हैं राधा रानी का और कहते हैं चलो। तो भक्त क्या करा, भक्त के हृदय में आ गया और भक्त जो है उनको ले आके भोग लगाने चला गया। तब जो है बाबा जी का ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि अरे राधा रानी कहाँ गई। वहाँ पर एक भक्त बैठे थे, वो भी बहुत कुछ बड़ी भक्त थे, उन्होंने बोला कि अरे वो लेके चला गया उसको जबरदस्ती पकड़ के। और ये गए, कह रहे कहाँ है, कह रहे वहाँ पे भोग खा रहे हैं, और गए सीधे सीधे उन्होंने क्या करा, ऑल्टर खोला। सीधे ऑल्टर खोला और अंदर वो क्या है प्रसाद पा रहे, वहीं पे जाके उन्होंने डांटना शुरू कर दिया कि अरे तुम राधा रानी को उठा के कैसे करके लेके आ गए, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये हमारी संपत्ति है, हम सहचरों की संपत्ति है, हम चाहेंगे तो तुम्हें दे सकते हैं, तुम अपनी मर्जी से नहीं ला सकते इसको। तब वो क्षमा मांगते हैं, कृष्ण कहते हैं अरे बाबा जी बड़ी गलती हो गई। तो इस तरीके से जो है, इसलिए जो है क्या करते हैं, कृष्ण इन सहचरियों का आश्रय लेते हैं, इनसे जो है प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो है राधा रानी से मिलवा दो। तो राधा रानी जो है, राधा रानी का जो है सौंदर्य कैसा है, हमने कृष्ण का सौंदर्य बताया, और राधा रानी जो है कितनी सौंदर्य में है। एक स्त्री जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, और वो बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री, आपको दूर से आप उसे देख रहे हो कि ये बहुत सुंदर स्त्री है और आभूषणों से सुसज्जित है, ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई जगमगाता हुआ इसके शरीर से बहुत लावण्य निकल रहा है, ये बहुत प्रकाशित है, कोई ऐसी स्त्री वहां खड़ी हुई है और आभूषणों से सुसज्जित है, लेकिन जब उसको आप नजदीक जाओगे तो देखेंगे कि कोई आभूषण है ही नहीं, वो केवल एक लड़की मात्र है, उसके शरीर में कोई आभूषण नहीं है, लेकिन वो लग रहा है कि आभूषण सुसज्जित है। तो ऐसा है श्रीमती राधा रानी का शरीर, जो आभूषण से सुसज्जित लगता है, होता नहीं है, लेकिन लगता है कि जैसे उन्होंने पूरे आभूषण पहने, उनका शरीर ही ऐसे है। तो ऐसी स्त्री को राधा कहते हैं, एक ये भी अर्थ है राधा का। तो राधा रानी इतनी सौंदर्यमय है, फिर आभूषण भी पहनाते हैं, आभूषण क्यों पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं राधा रानी की शोभा छुपाने के लिए, आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन राधा रानी की शोभा तो वैसे ही बढ़ी हुई है, तो शोभा छुपाने के लिए कि वो आभूषण पहनाते हैं, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के किसी भी अंग को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो जब देखती हैं, गोपियां देखती हैं कि कृष्ण राधा रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो गोपियां क्या करती हैं, उनके सारे अंगों में आभूषण पहना देती हैं कि कृष्ण विवश ना हो जाएं, बेहोश ना हो जाएं। अगर फिर भी अगर बेहोश हो जाते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं, मान कर जाती हैं, जब मान करती हैं तो उनको होश आता है, फिर ये मनाते रहते हैं। तो राधा रानी जो है कभी भी मान कर जाती हैं, कभी मान कर जाती हैं, क्योंकि ये मान किस लिए करती हैं, क्योंकि ये कृष्ण के आनंद के लिए करती है। राधा रानी जो भी करती हैं वो कृष्ण के आनंद के लिए करती हैं, क्योंकि कृष्ण से आनंदित होते हैं। इस भौतिक जगत में भी देखा जाए तो बताते हैं कि इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा जो प्रेमिका प्रेमी होती है, प्रेमी होता है, प्रेमी को सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब प्रेमिका रूठ गई है और वो मान गई, उसने मना लिया उसको, तो उसको सबसे ज्यादा आनंद आता है। तो उसकी अनुभूति आप सबको होगी, हमें तो नहीं है। तो ऐसा जो है शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा। तो कृष्ण भी जो है, क्योंकि ये कृष्ण से सब कुछ आ रहा है, तो कृष्ण जो है राधा रानी को मनाते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, यहां तक कि हम लोग ऐसा शायद नहीं कर पाए, यह शायद कोई करता भी होगा, कि वो अपना मुकुट भी उनके चरणों में रख देते हैं, लेकिन पीछे ललिता जी खड़ी होती हैं, वो ना ना करती हैं। फिर कृष्ण क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है सब राधा रानी के चरणों में रखते हैं, राधा रानी फिर भी मांग करती रहती हैं, लेकिन अंदर से वो रोती रहती हैं, घूंघट कर लेती हैं, लेकिन अंदर से वो रोती रहती हैं, क्योंकि ललिता उनकी गुरु है, वो मना करती रहती हैं। फिर क्या करते हैं, कृष्ण अपना मस्तक उनके चरणों में रख देते हैं, देही पद पल्लम उदारम, कि जब उनके चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं, फिर राधा रानी का जो है मान भंग हो जाता है, फिर जो है वो माननीय नहीं होती है। तो यहां पर जो है राधा रानी का मान भंग हो जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर से वो नाना करती है, अंदर से हां हां होती है। आचार्य लोग ऐसा बताते हैं, अंदर उनके पूरे हां होती है, क्योंकि वो कृष्ण को यह परम आनंद देना चाहती है, इसलिए ऐसा मान करती है, और कभी भी मान कर जाती है। एक बार जो है एक बार क्या हुआ कि कृष्ण जो है राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे और राधा रानी की जो है तुलना चंद्रमा से कर रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम्हारा मुख जो है वो चंद्र के समान है, तुम्हारे जो ये नख हैं 10 नख हैं ये चंद्र के समान है, अर्धचंद्र की तरह हैं, ऐसे जो है व्याख्या करते जा रहे थे हैं और तारीफ करते जा रहे थे, प्रशंसा करते जा रहे थे। राधा रानी मान कर गई, कृष्ण हैरान हो गए, ये राधा रानी मान क्यों कर गई? राधा रानी को बोले, राधा रानी जो है मान नहीं रही थी, उन्हें बोला अरे मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, तुम्हारे जो है चंद्रमा से तुम्हारे मुख की तुलना कर रहा था, इसे तुम क्यों मान कर गई? कह रहे मुझे सब पता है, तुम तारीफ तो मेरे मुख की कर रहे थे लेकिन ध्यान चंद्रावली का कर रहे थे, ध्यान चंद्रावली का कर रहे थे कि चंद्र से कर रहे थे ना सारा। तो ऐसे तरीके से जो है राधा रानी कभी भी मान कर जाती हैं। तो कृष्ण जो है इसलिए राधा रानी का जो है वो सौंदर्य, ऐसा नहीं है कि अभी आपने जैसे सुंदर किसी सुंदर स्त्री को देखा है और कुछ साल बाद देखेंगे तो वो क्या है सौंदर्य वो क्षीण होता जाएगा, समय समय के साथ क्षीण होता जाएगा। लेकिन राधा रानी का सौंदर्य ऐसा है नित्य नूतन रहता है, हमेशा बढ़ता जाता है। अभी जैसे आपने देखा और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उससे सुंदर हो गए राधा रानी, फिर थोड़ी देर बाद और देखेंगे फिर उससे सुंदर राधा रानी, तो उनका सौंदर्य जो है वो बढ़ता जाता है। जो जिसका सौंदर्य निरंतर बढ़ता जाता है उसे राधा कहते हैं। एक ये भी व्याख्या है, जैसे कि आप देखते हैं ना नदी में देखते हैं तो पानी पानी बहता है, आप देखेंगे ये पानी बह रहा है लेकिन जो आप देख रहे हैं वो पानी कई मील दूर जा चुका है क्योंकि वो कंटिन्यू बह रहा है, तो आपको पता नहीं लगता, आप लग रहा है कि हाँ ये पानी मैं देख रहा हूं, लेकिन वो पानी जो आपने अभी कुछ क्षण पहले देखा वो बहुत आगे जा चुका है। तो इसी तरीके से राधा रानी का जो सौंदर्य है वो जो अभी आपने देखा है वो उससे जो है वो उसे छोड़ के फिर आगे जो है बढ़ता ही चला गया, वो और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। तो निरंतर जो है राधा रानी का सौंदर्य बढ़ता जाता है, और कृष्ण जो है वो प्रेम में विवश हो जाते हैं, और उनकी प्यास जो है, हालांकि इनको क्या कहते हैं सौंदर्य का समुन्दर है, ये भी सौंदर्य का समुन्दर है, लेकिन ये समुन्दर कैसा है, इसकी प्यास निरंतर बढ़ती जाती है। ये समुद्र ऐसा है कि सामने वाले समुद्र को देखे है उसका पान कर रहा है, निरंतर पान कर रहा है लेकिन फिर भी प्यासा है। तो कैसा सौंदर्य हुआ वास्तव में जो है, हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये इन जो भी जो है हम लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं या वेद व्यास ने लिखे हैं ये वास्तव में पर्याप्त नहीं है। बाबा धाम में क्या है और वहां क्या वस्तु है ये हम लोग जो है बता ही नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है, वो शब्द ही नहीं है जिसकी हम व्याख्या कर सकें। जैसे चंद्रमा से तुलना करते हैं तो ये चंद्रमा क्या है, ये क्या है, दागी है और क्षय रोगी है, इससे क्या तुलना कर सकते हैं भगवान के मुख की या राधा रानी के मुख की। लेकिन क्योंकि रूप गोस्वामी बात करते हैं कि इस भौतिक जगत में और कुछ है ही नहीं तुलना करने के लिए, इसलिए चंद्रमा की तुलना करते हैं, कमल से तुलना करते हैं, क्या करें। तो जो है वो निरंतर जो है वो क्या करते हैं पान करते रहते हैं, और कृष्ण के जो है तुलना क्या करते हैं कमल से करते हैं, कमल से करते हैं, नमो पंकज नाभ्याय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंगरे, कि आपके जो है मुख नमो पंकज नाभ्याय, आपकी जो है नाभि जो है कमल के समान है, नमो पंकज नेत्राय, आपके नेत्र जो है वो क्या है कमल के समान है, नमो पंकज मालिनी है, नमस्ते पंकज आंगरे, तो सारे जो है शरीर की तुलना क्या है कमल से करते हैं। लेकिन ये कमल खिलता कब है, ये कमल खिलता कब है, जब राधा रानी के अधरामत का पान करता है तब ये खिलता है, नहीं तो क्या करता है ये कमल कुमला जाता है, कमल देखते हैं ना कुमला जाता है तो कितना बेकार सा लगता है, तो कमल जो है कुमला जाता है जब खिलता कब है, जब राधा रानी के अधरामत का पान करता है, हजम कर लेना थोड़ा सा अब लोग, और राधा रानी का सौंदर्य सुनते हैं। एक बार जो है कुरुक्षेत्र में जब ये सूर्य ग्रहण होता है ना, उस समय जो है सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आए थे और वहां से द्वारका से भी आए थे, तो जो है राधा कृष्ण का वहां पे मिलन हुआ था। ऐसा कि कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ था कि हाँ कि हम लोग, राधा रानी ने सोचा था कि वहां कृष्ण आएंगे या कृष्ण ने सोचा था वहां राधा रानी या ब्रजवासी आएंगे, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये इस बात से ऐसा हो गया था। तो वहां पर जो है इनका मिलन हुआ था। वहां पे जो महिषियां थी, भगवान कृष्ण की पत्नियां थी, तो उन्होंने बोला कि अरे राधा रानी, उनको मालूम पड़ा कि राधा रानी यहाँ आई हुई है, तो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग जो है राधा रानी को देखें, क्योंकि ये जो है कृष्ण हम लोगों से मिलते हैं उस समय भी राधा राधा करते रहते हैं, है? देखें राधा रानी क्या है, वास्तव में कितनी सुंदर है, क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि वास्तव में है कौन ये राधा रानी। तो उन्होंने क्या करा, कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, मैं अपने एग्जाम्पल से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। सोलो मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। तो क्या करा उन्होंने, महिषियां जो है वो राधा रानी का दर्शन करना चाहती हैं, तो महिषियों को मालूम पड़ा कि इस यहां पर जो है राधा रानी है, तो सारी महिषियां गई चलो चलो राधा रानी को देखते हैं। तो वहां पर देखा उन्होंने बाहरी जो है एक सुंदर स्त्री वहां पर घूम रही है, तो देखते ही जो है इन लोगों के होश उड़ गए, भाई ये राधा रानी है, है? हम लोग तो सोचते थे कि हम सुंदर हैं, वास्तव में अब मालूम पड़ा कि कृष्ण जो है हमेशा राधा राधा क्यों करते रहते हैं, ये राधा रानी है, उसके पास जाती हैं और प्रणाम करती हैं कि हे राधे हमें अपनी शरण दो, आप इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर है। तो गति में गति, नहीं नहीं नहीं, अरे आप क्या कर रही हो, मैं राधा रानी नहीं हूँ, आप राधा रानी नहीं है, कौन है? कहते मैं तो उनकी सेविका हूँ। हैं सेविका, आप ये सेविका हमसे सुंदर है, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। बोला राधा रानी अंदर है, आप राधा रानी से मिलने आई हो, हाँ मैं, हम लोग जो है कृष्ण की पत्नियां हैं। अच्छा, हाँ सबको जो है कहती जाओ जाओ राधा रानी से अंदर मिल रहे। तब वो जो है देखती है अंदर एक जो है एक गोपी बैठी होती है, उसको देखती कहती अरे भाई ये राधा रानी है, भाई ये तो कितनी सुंदर है। तुरंत जो है उनको दंड में प्रणाम करती है, राधे हे राधे हे राधे, आप राधा रानी हो, आप इतनी सुंदर हो। कहती अरे नहीं नहीं, हम राधा रानी नहीं है, मैं तो राधा रानी की सेविका हूँ, राधा रानी तो अंदर है, हैं ये भी राधा रानी नहीं है, तो क्या इससे भी सुंदर कोई होगी। ऐसे करते 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 वो 7 गेट पार करते हैं और 7वें गेट के बाद राधा रानी बैठी होती हैं, और जब राधा रानी को वो देखते हैं, देखते ही 16108 रानियां सब बेहोश हो जाती हैं, सब बेहोश हो जाती हैं कि इतना सौंदर्य, कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। वो सारी के सारे बेहोश हो जाती हैं। फिर ललिता जी देखती हैं, ललिता जी क्या करती हैं, तुरंत राधा रानी के चरणामृत लेके आती हैं और उन सब पे छिड़कती हैं, सब उड़ जाती हैं। तो ये जो है आप समझ सकते हैं हम कि राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। तो श्रीमद् भागवतम में पिंगला बोलते हैं कि आशा ही निराशा का कारण है। किसी से जब हम लोग आशा रखते हैं और वो आशाएं जब पूर्ण होती हैं तो निराशा में बदल जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में आशा ही परम सुखम, आशा ही जो है परम सुख होती है। आशा रखनी चाहिए, किसकी आशा रखनी चाहिए कि कब जो है मैं राधा रानी की दासी बनूंगी, मैं कब जो है उनकी सहचरी बनूंगी, मुझे कब जो है दासी पद प्राप्त होगा, कब जो है मैं उनकी सहचरी बनूंगी, कब मैं उनको सुंदर सुंदर पान के बीड़े खिलाऊंगी, कब जो है उनके चरणों में महावर लगाऊंगी, कब जो है उनके चरणों को सहलाऊंगी, कब उनके कपोलों पर पत्रावली करूंगी, कपोल मतलब गाल पर जो है चित्र बनाते हैं, कब जो है मैं उनकी वेणी गुंथन करूंगी, कब उनको पंखा झुलाऊंगी, कब जो है गाना गा के उनको सुनाऊंगी, कब जो है नाच कर उनको रिझाऊंगी, कब उनके लिए भोग बनाऊंगी। तो ये जो है सारी आशाएं होनी चाहिए, ये सारी आशा होनी चाहिए। तो ये आशा जो है वो परम सुखम है। तो जो है वृंदावन जब हम लोग जाते हैं तो ये आशा लेके जाना चाहिए। और वृंदावन की जो रज है, वृंदावन की जो राज है उसमें जो है लॉट पॉट हो जाना चाहिए। साधारणतः देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए दिल्ली में अगर कोई आपको मिट्टी मार दे तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन वृंदावन एक ऐसा स्थान है, बड़ा अजीबोगरीब स्थान है, वहां पर सो है लोग खाली चलते रहते हैं, 22 किलोमीटर चलते रहते हैं। अगर कोई कर्मी व्यक्ति होगा बोला यार क्या पागल हो गए, खाली पीली चल रहे हो, उससे क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर तक अपने पैरों को थका रहे हो यार, नंगे पांव चल रहे हो। कोई जो है जनपद परिक्रमा कर रहा है, कोई कोई तो जो है 108 बार प्रणाम करते हैं राधा कृष्ण को, फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं, उनको कई साल लग जाते हैं। क्या पागलपन है। लेकिन ये मूर्ख लोग जानते नहीं है, क्योंकि भक्त लोग क्या कर रहे हैं, वृंदावन की रज में लौट रहे हैं, वृंदावन की रज जो है अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो रज है जिसमें राधा कृष्ण के चरण पड़े हैं। वृंदावन की एक इंच भी ऐसी जमीन नहीं है जहां पर राधा कृष्ण के चरण ना पड़े हों, एक इंच भी ऐसी जमीन नहीं है, एक भी ऐसा पेड़ नहीं हो जिसपे जो है कृष्ण जिनके कीड़ा ना किया हो, एक भी ऐसा पेड़ का वृक्ष उसमें जो है फल वाले वृक्ष हैं जिसमें उसने ना फल ना खाया हो। तो कितना पवित्र स्थान है वृंदावन। तो ऐसी जो है वहां की रज में लौट जाना चाहिए। और भक्त लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं जब एक भक्त जो दूसरे भक्त को रज मारता है। आपने देखा होगा मायापुर में तो एक दूसरे को पूरा लपेट रहते हैं उसमें, रज में लपेटते हैं, और वो खेलते रहते हैं उसमें, रज में हंसते रहते हैं, अरे वाह तुमने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे पर रज लगा दिया। तो कितना महत्व होगा। क्यों? इससे क्या होता है, एक रज और एक है दूसरा भी रज, रजोगुण, वो भी रज है। तो जब इस रज में हम लोग लौट जाएंगे तो हमारा ये रजोगुण समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बजा दो यार, कितनी बड़ी बात बोली। तो रजो ये जो है, ये रज का इतना महत्व है। आचार्य लोग बोलते हैं यहां तक कि आप इस रज को अपने घर पे लेके जाओ और क्या करो, डेली स्नान करने से पूर्व अपने शरीर में इस रज को मलो। पहले स्नान किससे करो, इस रज से करो। तो इतना महत्व जो है इस रज का बताया गया। तो ये जो है इस प्रकार का हमारा भाव होना चाहिए। घड़ी आप ही आगे चल रही है, 15 मिनट। तो जब तो कृष्ण की ऐसे राधा रानी की दृष्टि जब कृष्ण में पड़ती है, ऐसे सौंदर्य में राधा रानी की दृष्टि जब कृष्ण में पड़ती है और उनकी दृष्टि से जब दृष्टि मिलती है तो एक बाण चलता है, एक बाण चलता है, और बाण क्या करता है, वो कृष्ण के हृदय को भेज जाता है, कृष्ण के हृदय को भेज जाता है। कोई बड़े से बड़ा योद्धा भी होगा तो कृष्ण का कोई बाल बागा कर सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगासुर बकासुर, बकी बका, बकी मतलब पूतना नहीं, बका उसका भाई था, बकी बका, बक बक करते होंगे पता नहीं क्या, इसलिए उनका नाम उन्होंने ऐसे रख दिया बकी बका। ऐसा राधा कोई महाराज से बोल रहे थे, पता नहीं उनका नाम बकी बका क्यों रखा, कुछ बक बक करते होंगे ऐसा। तो ऐसे जो है इतने बड़े बड़े जो योद्धा थे, कृष्ण जो है उनका चुटकियों में मार दिया। कंस कितना बड़ा योद्धा था, उसको जो है उन्होंने चुटकियों में मार दिया। आप जानते हैं ना कंस कितना बड़ा योद्धा था, कोल्या पेड़ हाथी जो था उसमें क्या था, 10,000 हाथियों का बल था। तो ये जरासंध का हाथी था और जरासंध ने शर्त रखी थी जो उसको उठा के फेंक देगा उससे मैं अपनी बीबी का, नहीं मैं देख रहा था कौन ध्यान से सुन रहा है, मैं अपनी बेटी का जो है विवाह कर दूंगा। तो बहुत से जो है योद्धा है, बहुत से योद्धा है, उन्होंने क्या करा, हाथी को कहीं तो हिला भी नहीं पाए, कहीं हिलाए भी तो उसको उठा नहीं पाए। 10,000 हाथी का बल होगा भीम में, दुर्योधन में है, लेकिन वो उसमें भी 10,000 हाथी का बल था तो ज्यादा में ज्यादा उठा सकते हैं, लेकिन उठाकर फेंक नहीं सकते ना। लेकिन कंस में कितना बल था, कंस ने उस हाथी को उठाया और 8 योजन यानी कि 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर दूर जाकर दूर फेंक दिया उसने। तो जरासंध ने अपनी बेटी का विवाह उनसे किया। तो कितना बल होगा उसमें? कंस में 100,000 हाथी का बल था उसमें, लेकिन कृष्ण ने उसको कैसा चुटकियों में मार दिया, इतना बलवान। तो लेकिन क्या है, ये घायल हो गए हैं किससे? केवल राधारानी के कटाक्ष, कटाक्ष समझते हैं ना, साइड ग्लांस होता है, डायरेक्ट नहीं देखती है राधारानी, साइड ग्लांस। तो वहां से जो है वो बाण चलता है, तो कृष्ण का जो है वो बल्कि का शरीर होता है उसको जो है भेज जाता है, उसके जो है भेज जाता है। और ये जो है अमोघ बाण है, लेकिन ये ऐसा अमोघ बाण है जिसके लिए कृष्ण के पास कवच भी नहीं है। लेकिन ये कौन सा बाण है, ये युद्ध कौन सा है? प्रेम संग्राम है, ये याद रखना, इस प्रेम से घायल हुए हैं कृष्ण। तो भ्रुकुटी जो होती है राधारानी की, ये भ्रुकुटी जो है, ये जो है वास्तव में जैसे काम का दंड होता है, ये काम का दंड है। और ये आप देखते हैं ना धनुष जो होता है, फिर उससे जो है बाण चलता है, बाण कहां से चलता है? राधारानी के नेत्र से चलता है। और जो उसकी नोक होती है, वो नोक क्या होती है? राधारानी की जो काजल की जो पुतली है, काजल है ना, ये काजल की जो नोक होती है, उसे देख के जो है कृष्ण क्या हो जाते हैं? मदोहोश हो जाते हैं। तो वो जो है ये पतली सी रेखा है काजल की, उससे जो है ये अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष मतलब जिसके नेत्र कमल की तरह हैं, नमो पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र जो है कमल के समान है। तो जब बाण चल रहा है तो कमल की क्या हालत होगी? कमल को जो है बाण से मारा जाता है, कमल की क्या हालत होगी? तो ये हालत हुई है, ये अरविंदाक्ष है, इनका नाम अरविंदाक्ष है, यानी कि जिनके नेत्र कमल की तरह हैं, इनका नाम ये है अरविंदाक्ष है। तो जब वो अक्ष जो अरविंदाक्ष जो अक्ष उनसे मिल गए, किन से? जहां से बाढ़ चल रहे हैं, तो ये घायल हो गए। अब ये घायल पड़े, तो ये जो इनकी हालत हो गई है। और उस बाण की नोक पे क्या है? जहर लगा हुआ है, जहर लगा हुआ है। कई कई जो है पहले योद्धा थे, वो बाणों में जहर लाया करते थे, फिर वो बाण छोड़ते थे, जिससे जो है व्यक्ति शीघ्र मर जाता था। तो ये जो है उस बाण में जहर लगा हुआ है, लेकिन वो जहर कौन सा है? प्रेम अमृत रूपी जहर, प्रेम अमृत है उसमें। उसको जो है प्रेम अमृत को इतना वो जो है प्रेम अमृत इतना तीव्र है जिससे जो है कृष्ण घायल हो जाते हैं। तो राधा रानी की जो है नेत्रों को देखकर कृष्ण के नेत्र क्या करे? मोर की तरह नाचने लगे, जैसे मेघ को देखकर मोर नाचने लगते हैं, तो इस तरीके से नाचने लग जाते हैं। और राधा रानी के नेत्रों के सघन वन में कृष्ण के नेत्र खो गए, कृष्ण के नेत्र खो गए हैं। अब कोई यहां पर स्तुति करे कि हे कृष्ण मेरी ओर दृष्टि करो, अरे वो क्या दृष्टि करेगा, उसकी दृष्टि तो पहले ही खो गई है, वो क्या करेगा? तो फिर क्या करना चाहिए? राधारानी के नेत्रों को जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधे मेरी ओर दृष्टि करो। जब राधारानी दृष्टि करेगी तो वहां पर जो खोए हुए हैं तो वो तो अपने आप ही आ जाएंगे आपकी तरफ। कृष्ण को जो है रास्ता नहीं मिल रहा है, वो खो गए हैं, तो आपकी तरफ क्या देखेंगे? जिस फूल की तरफ राधारानी देख लेती हैं, वो फूल जो है कृष्ण दौड़ते हैं तोड़ने के लिए, ये लो राधे ये तुम्हारे लिए है। तो हम जैसे फूल है, हम जैसे अगर फूल हैं, अगर राधा रानी हमारी ओर दृष्टि कर ले तो कृष्ण क्या करेंगे? तुरंत स्वीकार करेंगे कि इसकी ओर राधा रानी की दृष्टि हुई है। मजा दो यार, तो थोड़ा थोड़ा आपने भेजा दे रखा दोस्तों, उसका पड़ता है। अब जो है हमारा यहां से लेक्चर शुरू होता है। ये तो हमने बेस, मैंने बोला बेस रख देते हैं, बेस था हमारा। आप लोग कितना बचा सकते हो? कितना? 15 मिनट तो आगे है, 9:30 है, मोर देन 1 आवर, 1 आवर तो खिंच जाएगा। कहते हैं 9 के बाद 9, लेकिन आज 9 नहीं है, 10 के बाद 10 है। तो चातक, चातक पक्षी होता है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा कहाँ देखता है, ऊपर देखता है और बादल की ओर, बादल से बहुत प्रेम करता है वो, और हमेशा आस लगाता है कब इस बादल से बारिश होगी और उसको जो है मैं पीऊंगा। यहां तक कि एक बार राधा गोविंद महाराज लेक्चर में बोला था कि एक चातक जो है वो गंगा जी में गिर जाता है, गंगा जी में गिर जाता है तो वो अपनी चोंच पर कर लेता है कि नहीं इसका पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि अगर गंगा जी में कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। उसने बोला अगर मेरी मुक्ति हो जाएगी तो मैं इस बादल से प्रेम कैसे करूंगा। तो वो मुक्ति की परवाह करते हुए ना करते हुए भी क्या है वो बादल से प्रेम कर रहा है। तो एक एक साधारण जीव की ये तुलना है, तो राधा रानी क्या होगी। तो राधा रानी जो क्या करती है, हमेशा उस नव जलधर श्याम घनश्याम की ओर हमेशा एक टक देखती रहती हैं कि कब जो है कृष्ण मुझे आलिंगन करेंगे। और कृष्ण के मुख चंद्र की चकोरी है, चकोर जो होता है वो क्या करता है, चांद, चांद से प्रेम करता है, वो चांद की ओर देखता है और चांद से जो किरणें निकलती हैं उसी का पान करता है। तो कृष्ण कृष्ण मुख चंद्र की जो है राधा ने क्या है चकोरी है। और कृष्ण के नेत्र रूपी भ्रमर के लिए राधा ने क्या है कमलनी है, कमल है। तो भ्रमर क्या करता है, वहां पर विश्राम करता है कमल पे। तो राधा ने क्या है कमलनी है कृष्ण रूपी, कृष्ण के नेत्र रूपी भ्रमर के। और कृष्ण के मकरंद का पान करना हो तो राधा रानी भ्रमरी बन जाती है। इसमें बहुत कुछ है लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। कृष्ण के शरीर से जो मकरंद निकलता है, और श्री कृष्ण के गुणगान में हमेशा डूबी रहती हैं और अपने गुणगान में हमेशा कृष्ण को डुबाए रखती हैं। और श्याम ऊपर से कैसी है, गोरी तप्त कांचन गौरांगी, गोरा कलर रंग का, ऊपर से गौरांगी है लेकिन अंदर से क्या है मन से सावली है, क्योंकि सावले की हमेशा उनका मन में रहता है हमेशा, इसलिए मन से सावली है। तो वैसे अब राधा रानी के हम लोग कुछ गुणों का वर्णन करेंगे, हालांकि 64 गुण हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट तो आ गए हैं, 9:15 बजे तक कितना खींचते हैं, चलो ना, क्या कोई बात नहीं, खाना तो रोज खाते रहते हैं। तो सारा सौंदर्य जो है कृष्ण जो है वह सौंदर्य सिंधु का आता है, सारा सौंदर्य उनसे आता है, जितना भी भौतिक जगत में सौंदर्य है वो कृष्ण के जो है सौंदर्य से सौंदर्यवान है। कृष्ण इतने सुंदर हैं जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप देख रहे हैं ना ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषवान, अरे करोड़ों कामदेव भी इकट्ठे हो जाएं अगर वो एक में घुस जाएं तो भी कृष्ण किसी से समानता नहीं कर सकते हैं। क्या समानता है, उसके एक बिंदु के समान भी नहीं है कृष्ण के, कृष्ण इतने सुंदर हैं। तो लेकिन जब राधा रानी ऐसे सौंदर्यवान व्यक्ति जब राधा रानी के सामने जाता है और अगर उनकी एक पलक भी झपक जाती है तो उनको लगता है कि 700 कल्प बीत गए, 700 कल्प के जो विरह का अनुभव होता है वो कृष्ण का अनुभव होता है। हमेशा जो है वो चाहते हैं कि एक टक खुली आंखों से कृष्ण राधा रानी के जो है चेहरे को निहारते रहते हैं और उसके रस का पान करते रहते हैं। तो ऐसा जो है रूप का समुद्र है श्रीमती राधा रानी, जिससे जो है कभी भी कृष्ण नेत्र हटाना नहीं चाहते हैं और कृष्ण के नेत्र भी जो है वहां से हटना नहीं चाहते हैं। तो ये जो है और क्षण क्षण में जो है राधा रानी का सौंदर्य बढ़ता जाता है। मैंने देखा कि अरे ये जो है इसको मैंने देखा, अरे उनको लगता है कि नहीं मैंने इसको देखा ही नहीं, ये तो बहुत सौंदर्यवान है। तो हमेशा जो है वो उसकी पिपासा बढ़ती जाती है, इसलिए जो है उनका सौंदर्य क्या है राधा रानी का अपरिमित सौंदर्य है। और इतना उनका सौंदर्य है कि भगवान के अगर उनके जो चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह भी इतने सुंदर हैं उनके कि करोड़ों करोड़ों मोहिनी जो रूप है, जो मोहिनी भगवान ने मोहित कर लिया था, हैं, शिव जी को मोहित कर लिया था और देवी देवताओं को मोहित कर लिया था, असुरों को मोहित कर लिया था, लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों जो मोहिनियां हैं वो भी जो है उनके चरण चिन्ह पे निछावर हो जाती हैं। ऐसा राधा रानी का सौंदर्य है और अतुलनीय माधुर्य, दूसरा अतुलनीय माधुर्य। तो उनका माधुर्य इतना ऐसा है कि कोई उनका एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता। सारा जितना जो है तेज निकल रहा है, ये जो बिजली है इनका जो भी तेज निकल रहा है, राधा रानी के नख की कांति है, है जितना आप देख रहे हैं सूर्य चंद्र ये सब किससे प्रकाशित होते हैं, बिजली जो प्रकाशित होती है किससे प्रकाशित होती है, कृष्ण के शरीर से जो कांति निकलती है उससे प्रकाशित होती है, है ये सारा तेज आ रहा है। लेकिन राधा रानी के तेज से ऐसे कृष्ण जैसे सारा जो है तेजवान हो रहा है, वो जो है राधा रानी के तेज से जो है वो आकर्षित हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो ऐसा जो है राधा रानी का महा सुखद प्रेम है जो कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी जो है उनके एक नख की कांति जो निकलती है, नख से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी भी जो है तुलना नहीं कर सकते। अभी हम लोग जो है थोड़ा शीघ्र आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि कवर कर नहीं पाएंगे। और कृष्ण को जो है मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति कहते हैं, जो मुरारी के भक्त हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं उन पे जो है उनकी उनके चरणों में जो है उनकी हमेशा चित्तवृत्ति रहती है। लेकिन ऐसा मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति किस पे जो है चित्तवृत्ति रखता है, अपनी राधा रानी पे रखता है। अपना चित्त और वृत्ति हमेशा जो है वो राधा रानी में जो है उनमें मग्न रहती हैं, है राधा रानी के जो है महाप्रेम रूपी जो तरंगे उठती हैं उसमें जो है कृष्ण का मन आसक्त हो जाता है। तो ऐसी जो है राधा रानी की अतुलनीय माधुर्य है। और तीसरा है उनके दिव्य अंगों में जो है पवित्र सुगंध है, उनके शरीर से इतनी सुगंध निकलती है। आप देखते हैं कि आपने पढ़ा है कि स्वर्ग की जो देवियां हैं उनके शरीर से जो सुगंध निकलती है वो 80 मील तक जाती है, लेकिन राधा रानी के जो है शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, वो कितने किलोमीटर जा सकती है। तो इतना जो है अस्मोर्द जो है उनका शरीर का सुगंध है, जो कि वहां का जैसे जो है किसी कुंज में वो प्रवेश करती हैं, वहां का कुंज पूरा सुवासित हो जाता है और सारी लता पुष्प खग मृग स्वयं कृष्ण भी जो है वो क्या करते हैं उस सौरभ में बिक जाते हैं कि ये कैसा सौरभ आ रहा है, कैसी सुगंध है, वो बिक जाते हैं। और हम लोग आगे जाते हैं, 10 मिनट हमारे पास हैं। और अधरों पर निरंतर पवित्र मुस्कान, तो हमेशा जो है राधा रानी के होठों पे मुस्कान रहती है, कभी जो है वो ऐसे नहीं कि कोई मुरझा के बैठी हुई है या सुस्त बैठी हुई है, रूठ के बैठी हुई है, किसी से वो रूठती नहीं है। अगर रूठती है तो केवल कृष्ण से रूठती है और किसी से नहीं रूठती है। राधा रानी कभी भी किसी सखी से कभी किसी ऐसे रूठती नहीं है, केवल कृष्ण से रूठती है क्योंकि उनको आनंद आता है, इसलिए मात्र। अन्यथा वो बहुत मधुर हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत ही मधुर हैं। तो हमेशा जो है वो कृष्ण को आनंद के लिए देने के लिए ऐसे करती हैं। तो कृष्ण की मुस्कान ऐसी है जो जहां पर अगर मुस्कुराकर देख लें तो वो क्या होता है, कृष्ण मान लीजिए कि भ्रमर है, भौरे हैं, भ्रमर है। तो भ्रमर क्या करता है, भ्रमर क्या करता है, एक फूल से दूसरे फूल में जाता है, एक फूल को जो है पूरा वो छत कर देता है, छत विछत कर देता है, देखते हैं ना, और उसका पराग पूरा पराग ले लेता है, पूरा पराग ले लेता है और वो दूसरे पर दूसरे फूल पर चला जाता है। वो ये परवाह नहीं करता भ्रमर कि पहले जो जिसको मैंने पराग लिया है, जिसका जिस को मैंने फूल को छत विछत कर दिया है उसकी क्या हालत होगी। तो भ्रमर ऐसा नहीं सोचता है और बल्कि क्या करता है, मुस्कुरा के चल देता है कि हाँ इतना जो है मैंने आज इससे रस लिया, इतना पान लिया, मुस्कुरा के चल देता है। तो ये ऐसे ही है जैसे बोलते हैं दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलती है। تو ایسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کو اور مسکرا کے چل دیتا ہے. تو کرشن کیا کرتے ہیں اپنے سوندر سے گوپیوں کو چت کو چھت وچھت کر دیتے ہیں, ان کو آکرشت کر لیتے ہیں اور ان کی ایسی دشا ہو جاتی ہے کہ وہ گھائل سی ہو جاتی ہیں, گھائل سی ہو جاتی ہیں. لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پریم میں یہ گھائل ہو چکی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں مسکرا دیتے ہیں. اور وہ مسکراہٹ کیسی لگتی ہے, ایک گھاؤ پہ, ایک تو گھائل ہو گئی گھاؤ ہے اور گھاؤ پہ جیسے نمک چھڑ دیا ہے تو وہ اور بھیانک ہو جاتا ہے, ان کے لیے آسہنی ہو جاتا ہے. تو بھرمر کیا ہوتا ہے, ایک کاشت میں بھی چھید کر سکتا ہے, اس میں اتنی پاور ہوتی ہے. لیکن ایسا بھرمر جب کمل کے نکٹ جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے, کمل کے نکٹ جاتا ہے تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے وہ مدہوش ہو جاتا ہے, پاگل کی طرح ہو جاتا ہے اور اس میں پرویش کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اسے پتا ہے, اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کمل جو ہے شام کو بند ہو جائے گا اور میری مرتی ہو جائے گی, لیکن وہ اتنا نمگن ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ ہے وہ کمل رانی, کون ہے, رادھا رانی. تو ساری گوپیوں کو چھت وچھت کر کے جب آ جاتا ہے تو جب رادھا رانی کی اور دیکھتا ہے تو وہ ایسا جو ہے مدہوش ہو جاتا ہے, ایسے پاگل ہو جاتا ہے کہ بس اب وہ چاہتا ہے کہ اس کمل کا جو ہے میں پان کروں. جب ایسا سوچتا ہے تو رادھا رانی کیا کرتی ہیں, پھر ایک سائڈ گلانس پھر سے مارتی ہیں مسکان سے, مسکرا دیتی ہیں ان کی. وہ مسکان کیا لگتی ہے ان کو, اس گھاؤ میں نمک کی طرح لگتی ہے. تو بدلہ لے لیا بہت گوپیوں کو انہوں نے کیا کرا, چھت وچھت کر دیا. اب رادھا رانی کیا کرتی ہیں, ان کو چھت وچھت کر دیتی ہیں. تو یہ رادھا رانی کا جو ہے اسمارت نرنتر مسکان ہے. اور پھر جو ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں, نیتروں کی, نیتروں میں, نیتروں کو سداورشنی درشٹی, نیتروں کی سداورشنی درشٹی ہے. تو نیتر سے جو ہے امرت ورشا ہوتی ہے. آگے ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ابھی سمے نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, نیتروں کی چنچلتا, رادھا رانی کے نیتر بہت چنچل ہیں, یہاں تک کہ جب وہ گھونگھٹ بھی کر لیتی ہیں تو بھی ان کے جو ہے نیتر چنچلتا نہیں چھوڑتے ہیں, بہت چنچل. اور پھر جو ہے وشال نیتروں کی وکرتا, وکرتا کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیڑھی چال. پریم جو ہوتا ہے نا وہ سیدھی سیدھی چال نہیں چلتا ہے, ہمیشہ ٹیڑھی چال چلتا ہے. اب پریم کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا, کئیوں کو دھوکہ دینا ہوگا آپ کو, ماتا پتا سے جھوٹ بول کے آتے ہیں, گرو سے جھوٹ بول, گرو جن اس میں, گرو جن میں سب ماتا پتا بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, تو ان کو دھوکہ دینا پڑتا ہے. تو پریم جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ٹیڑھی چال چلتا ہے ہمیشہ. کتنے بار دیکھو آپ, یہ رادھا رانی جب کرشن سے پریم کرتی ہیں تو جٹیلا کٹیلا اور ان کے جو پتی ابھیمنیو وغیرہ سب کو کیا ہے, وہ دھوکہ دے کے آتی ہیں. تو پریم جو ہے کیا کرتا ہے, ہمیشہ ٹیڑھی چال جاتا ہے. تو رادھا رانی کی جو ہے وہ کیا ہے, نیتر وکر جو ٹیڑھی چال جاتے ہیں. اور اس میں کیا ہے, وہ بہت اجول ہیں اور اس میں جو ہے رس بڑے ہوئے ہیں, پورے رس بھرے ہوئے ہیں اور انیارے ہیں, مطلب کہ اتنے پریے لگتے ہیں کہ بس اس سے درشٹی نہیں ہٹتی ہٹتی ہے. اور اس میں جو ہے اندر لگا ہوا ہے جس کو دیکھ کر کرشن کو مہا سکھ پراپت ہوتا ہے اور وہ روچی اس میں روچی لیتے ہیں اور ان کو منوہر لگتے ہیں. سکھ کا جیسے سمندر, سکھ کا جیسے سمندر ان کے ہردے میں آ گیا ہو, ایسے جو ہے رادھا رانی کے نیتر ان کو لگتے ہیں. تو آگے جو ہے اس کی ویاکھیا بہت بڑی ہے لیکن ہم آگے چلتے ہیں. اب لمبے کالے کیش پاش, لمبے کالے کیش پاش, تو رادھا رانی جو ہے ان کے مکھ پر کبھی کبھی کیش کی راشی آ جاتی ہے, کیش آ جاتے ہیں ان کے مکھ پہ آ جاتے ہیں. تو جب وہ کیش آ جاتے ہیں مکھ پہ تو رادھا رانی کا سوندر اور بڑھ جاتا ہے, اور سوندر بڑھ جاتا ہے. اور کرشن جو ہے ان کو پھر کیا کرتے ہیں, للچائی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. جو ویکتی ناگ پاش, ورن پاش, برہم پاش ایسے پاس سے نہیں بن سکتا, وہ ان کے رادھا رانی کے ایک ایک کیش پاس سے بن جاتے ہیں. ماتر ایک کیش ان کے کپول پر آ گیا उससे कृष्ण बंध गए, उससे आकर्षित हो गए, महा आकर्षण हो गया हमको, तो उस केश पास ने जो है उनको बांध दिया। और हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री को अबला बोलते हैं, तो ये अबला है सबला है? अरे केश ने जो ब्रह्म पास नहीं मान पाया, जिसको वरुण पास नहीं मान पाया, जिसको नाग पास नहीं मान पाया, उसको एक केश ने मान दिया। अभी पूरे पूरे केशों की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल एक बाल की बात कर रहे हैं, एक बाल की। तो ये अबला है सबला है? सबला है, कितना बड़ा बाल है उसमें। आप लोग अपना प्रशंसा मत समझो, हमारी प्रशंसा होती है, आपकी प्रशंसा वैसी है, आप लोग भक्त हैं। और सिर पर जो है राधा रानी चंद्रिका सुशोभित होती है उनके, चिंता मत करो आप, जल्दी खत्म करते हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट मार रहे हैं, अभी बोला था बहुत चले थे हम। तो सिर पर जो है उनके चंद्रिका सुशोभित होती है, जब कृष्ण जब उनके सिर की चंद्रिका देखते हैं तो कृष्ण का जो मुकुट है वो उस ओर झुक जाता है। तो आप देखोगे ना, आप देखो वहां भी वैसा ही है, ये जो है श्री उपाध्याय ने ऐसा किया है एग्जाम, क्या हम लोग जो मुकुट बनाते हैं, जो पगड़ी बनाते हैं, मुकुट बनाते हैं, तो कृष्ण राधा रानी की ओर झुकाव होता है उनका हमेशा। मोर मुकुट जो होता है वो राधा रानी की ओर झुका होना चाहिए, और राधा रानी का जो चंद्रिका है वो कृष्ण की ओर होना चाहिए, ऐसा मुख है इंद्र प्रभु बताया था। और ऐसा यहाँ पर भी जो है ज्ञात होता है यहाँ पर भी ऐसा। तो राधा रानी जो कृष्ण का जो है वो मुकुट जो है वो राधा रानी की चंद्रिका की ओर झुक जाता है, तो ये चंद्रिका की शोभा है। और दसवां जो है वो हमेशा राधा रानी की जो है कृष्ण को ये लालसा होती है कि राधा रानी के वेणी गुंथन करें, और कृष्ण इसमें बहुत दक्ष हैं और हमेशा याचना करते रहते हैं कि कब मुझे राधा रानी जो है ये सेवा देगी कि मैं उनकी वेणी गुंथन करूं। और कृष्ण इतना दक्ष हैं कि कोई भी जो है सखियां भी इतनी दक्ष नहीं है राधा रानी का वेणी गुंथन करने के लिए। और जब राधा रानी उनको सेवा देती हैं तो कृष्ण इतना प्रसन्न होते हैं और उस वेणी को बार बार हृदय से लगाते रहते हैं, तो ये वेणी गुंथन है। और फिर अंगों की सुकुमारता, फिर उसके बाद आता है अलौकिक रूप दर्शन, तो उनका इतना उनका रूप दर्शन ऐसा है, मैं इस पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, कि कृष्ण जो है चाहते हैं कि उनके महाप्रेम रस के महाप्रेम रस जो है उनके रोम में लहराता है, तो कृष्ण जो है कृष्ण देखते हैं तो उनको रोम रोम में उनके आंखें हो जाती हैं, कृष्ण के रोम रोम में आंखें हो जाती हैं जब राधा रानी के रूप का दर्शन करते हैं, क्योंकि वो एक आंख से दर्शन नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं पूरे शरीर में उनके आंख आ जाती हैं, रोम रोम में आंख आ जाती हैं, एक रोम समझते ना ये रोम है, तो हर रोम में जो है वो आगे आंख उत्पन्न कर देते हैं, और इतने आंखों से जो है वो राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं। और जो है वो परम बुद्धिमता है, राधा रानी बहुत बुद्धिमान है। सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं बस 15-16 करके विराम कर रहा हूँ, 64 गुण नहीं बोलेंगे हम, तो 15-16 गुण हैं बोलेंगे, अभी कौन सा हुआ है वो हम आपको नहीं बताएंगे। और राधा रानी जो है एक बार एकांत कुंज में कृष्ण और राधा रानी जो है वो बैठे होते हैं, तो राधा रानी क्या करती हैं कृष्ण को रिझाने के लिए नृत्य करती हैं, नृत्य करती है, और नृत्य कैसा होता है महारस से भरा हुआ नृत्य, महारस से भरा हुआ नृत्य होता है, और मुख से जो है वो मुख से बोलती जाती हैं थे थे ताता थे थे, मुख से भी बोलती जाती हैं और नृत्य करती जाती हैं। और कभी कभी क्या करती हैं वो पृथ्वी पर अपने चरण पड़कती हैं, तो ऐसा जो है वो महारस में नृत्य करती हैं, और उस नृत्य को देख कर महारस में का पान करके कृष्ण के आगे हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो राधा रानी जब देखती हैं कि जिसके लिए मैं नृत्य कर रही हूँ वही बेसुध हो रहा है, तो फिर जो है वो नृत्य चेंज करती हैं। अब कैसा नृत्य करती हैं, वो चुटकियाँ बजा के नृत्य करती हैं ताकि उनको होश रहे, फिर जो है ये नृत्य। लेकिन कुछ समय बाद उसमें भी जो है कृष्ण बेसुध हो जाते हैं, जब कृष्ण जो है फिर बेसुध हो जाते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं उनको नृत्य करते करते हाथ झड़क देती हैं, कभी धोती झड़क देती हैं, ताकि कृष्ण को जो है वो होश रहे, होश रहता है। तो कई जो है भाव के प्रदर्शन करती हैं, मुस्कुराहट होती है, बंक ब्रकुटी, बंक मतलब होता है टेढ़ा, तो टेढ़ी ब्रकुटी करती हैं, और नेत्रों से कटाक्ष करती हैं, और मुख से थे थे दादा थे थे करती रहती हैं। तो ये जो है सुभंग नृत्य होता है, ऐसा जो है नृत्य जो है श्रीमती श्री केवल श्रीमती राधा रानी ही कर सकती हैं। तो कृष्ण देखते हैं जब राधा रानी जो है उनको नृत्य करते करते कई बार स्पर्श कर देती हैं, तो अब तो कृष्ण चाहते हैं कि मैं भी इनको स्पर्श करूं। कृष्ण बहुत चतुर हैं, तो क्या करते हैं वो राधा रानी को स्पर्श करने जाते हैं। जैसे ही राधा रानी को स्पर्श करने जाते हैं, राधा रानी उनका हाथ झड़क देती है, उनको स्पर्श करने नहीं देती है। तो कृष्ण चतुर हैं, तो कृष्ण जो है चतुर शिरोमणि कहा जाता है उनको, तो बहुत चतुर हैं। अब वो क्या करते हैं, किसी और अंग को देखते हैं और किसी और अंग का स्मरण करते हैं कि मैं दूसरे अंग को छूलूंगा। तो जैसे ही जो है राधा रानी की तरफ बढ़ते हैं, तो राधा रानी वो समझ जाती है जो उनके मन में होता है, वो नहीं समझती है जो जिस ओर वो देखते हैं। तो जैसे ही वो जो उनको टच करना चाहते हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण चतुर शिरोमणि, तो राधा रानी चतुर शिरमौर हैं, वो जो है उनसे भी तेज हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इनके मन में क्या है, ये कुछ दिखा रहे हैं, है कुछ और मन में। तो उन्होंने वहां पर रोक लिया जहां पर वो मन से स्पर्श करना चाह रहे थे, उन्होंने वहां पर रोक लिया। फिर इस तरीके से जो है कृष्ण और कई प्रकार के जो है प्रयास करते हैं, लेकिन राधा रानी जो है हर बार विजयी होती हैं। फिर राधा रानी से कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े जाते हैं कि वाह, मेरे सारे प्रयास विफल हो गए, मैं मान गया राधा रानी तुम जो है वो चतुर शिरमौर हो। और हाथ जोड़ के जो है राधा रानी के आगे अधीन हो जाते हैं और चरणों की तरह स्पर्श करते हैं, लेकिन तब राधा रानी रोकती नहीं है क्योंकि हार गए तो चरण स्पर्श करने देती है। तो ये जो है, और फिर जो है फिर और भी है, सेवा में प्रीति है, सेवा में जो है राधा रानी ऐसी जो है राधा रानी की सेवा में इतनी प्रीति है कि राधा रानी की सेवा देखकर भी कोई सेवा करने लग जाता है, कोई भी सेवा करने लग जाता है, इतनी राधा रानी की सेवा में प्रीति है। कृष्ण को केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा करती है, यहां तक कि कृष्ण भी जब राधा रानी की सेवा देते हैं तो उनको भी सेवा करने का इच्छा हो जाती है कि मैं भी सेवा करूं। किसकी सेवा करूं, राधा रानी की सेवा करूं। तो कृष्ण जो है कई बार प्रार्थना करते हैं कि मुझे सेवा दो, और सेवा करने के लिए क्या चाहिए, दो गुण चाहिए। एक तो है आतुरता होनी चाहिए, सुनानी चाहिए, हाय कृष्ण। तो सेवा करने के लिए दो गुण चाहिए, एक तो सुनानी चाहिए, आतुरता होनी चाहिए, और दूसरा है दीनता होनी चाहिए। तो राधा रानी से जब वो सेवा मांगते हैं, तो कहते हैं क्या सेवा करना चाहते हो, तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों में महावर लगाना चाहता हूँ। तो राधा रानी जो है देखती हैं कि ये इनके अंदर बहुत उत्साह है, बहुत चाह है, बहुत आतुरता है, तो राधा रानी उनको आज्ञा देती रहती हैं, ठीक है। तो कृष्ण क्या करते हैं, जैसे हम लोग गुरु के चरण लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो प्रणाम करते हैं और अपने मस्तक को धारण करते हैं। तो कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं, कृष्ण राधा रानी के चरण लेते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और रंग महल में उन्हें विराजमान कराते हैं और स्वयं श्रृंगार करते हैं। तो सबसे पहले उनके जो है केस को संवारते हैं, फिर मोतियों से उनकी मांग भरते हैं, और फिर ललाट पर सुंदर तिलक लगाते हैं, फिर लाल रंग की बिंदी लगाते हैं, और फिर दोनों कर्णों में रत्न जड़े कुंडल पहनाते हैं, फिर नासिका में नोशबिंद पहनाते हैं, फिर कपोल पर श्याम वर्ण का बिंदु लगाते हैं, कपोल पर, और यह अग्रभाग जो होता है यहाँ पर जो है एक बिंदु लगाते हैं, और फिर एक झिल्ली सी थोड़ा सा बाल आगे कर देते हैं, थोड़ा सा बाल आगे कर देते हैं, क्योंकि जो है उससे और सौंदर्य बढ़ जाता है। तो और फिर नेत्रों में अंजन लगाते हैं और नुकीली पैनी रेखा कर देते हैं, क्योंकि राधा रानी की जो आँखें हैं वो यहाँ तक कान तक आ जाती हैं, तो वो एक नुकीली पैनी रेखा बनाते हैं अंजन की, और फिर दर्पण लेकर उनके रूप का दर्शन कराते हैं। तो प्रिया जी बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्होंने बोला कि अरे ऐसा तो जो है मेरी सखियाँ भी ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकती मेरा जैसा आपने श्रृंगार किया है। तो फिर क्या करती हैं राधा रानी, उनको इस सेवा का फल देती हैं। क्या फल देती हैं, अपना बीड़ा पान देती हैं सेवा के बाद, जब आपने सेवा किया तो उसका प्रसाद मिलता है ना, तो उन्होंने वो प्रसाद देती हैं। तो कृष्ण का जो है, कृष्ण का जो है रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंद के समुन्द्र में डूब जाता है। पर उन्होंने देखा कि अरे जो मैंने सेवा में मांगी थी वो तो रह गई। क्या सेवा मांगी थी? चरणों में महावर लगाना। तो वो चरणों में महावर लगाते हैं और महावर देते ना, स्त्रियां केवल लाल लाल आलता लगा देती हैं, चरणों में लगाते हैं आलता लगाते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं लगाते हैं। कृष्ण बहुत सुंदर डिजाइन करते हैं उसमें, और सुंदर डिजाइन करते हैं, और फिर जो है जब आलता लगा लेते हैं तो उससे जो है कृष्ण इतना आकर्षित हो जाते हैं कि अपना मोर मुकुट उनके चरणों में रह देते हैं। तो ये जो है राधा रानी की सेवा की है। फिर राधा रानी ने जब ऐसी सेवा करी तो कृष्ण को क्या है, उन्होंने हृदय से लगा लिया। और उसकी बात आता अनुपम धैर्य है, फिर विरह जनिक विरह कृष्ण श्री कृष्ण जन्य विरह नित्य कातरता और नित्य मिलन है। ऐसे बहुत सारे हैं, नित्य मिलन का हम थोड़ा बता देते हैं, क्यों थोड़ा सा बताएंगे, वैसे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा भी है। तो नित्य मिलन में जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तो मिलन होने पर भी मिलन की उत्कंठा, मिलन हो रहा है लेकिन फिर भी मिलन की उत्कंठा है। और दूसरा होता है मिलन होने पर भी अपरिचित रहना, अपरिचित रहना, अपरिचय है, ऐसे लगता है कि इससे कभी मिले ही नहीं है। और तीसरा होता है मिलन ना होने पर भी मिलन का अनुभूति। तो मिलन ना होने पर मिलन की अनुभूति क्या होती है, जैसे कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं, कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, राधा रानी और सखियां कृष्ण के बारे में चर्चा करती हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करती हैं, तो क्या होता है उनको, हालांकि मिलन नहीं है फिर भी मिलन की अनुभूति होती है। जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हालांकि यहाँ पे हम कृष्ण से मिल नहीं रहे लेकिन ऐसा हमारे आंखों के सामने घूम रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा, ऐसा दृश्य होता होगा, राधा रानी ऐसी करती होगी। तो ये जो दृश्य घूम रहा है ये भी एक मिलन का पूर्ति करता है, मिलन की पूर्ति करता है। तो मिलन ना होने पर भी मिलन का अनुभूति होती है। और फिर जो है मिलन होने पर भी मिलन की उत्कंठा होती है। मिलन मिलित हो गए, दोनों मिल गए हैं लेकिन उत्कंठा होती है, हमेशा जो है हमेशा आज को देखते रहे ऐसा उत्कंठा होती है, दर्शन की लालसा होती है। और ऐसी इच्छा होती है कि इसमें मैं अपने प्राण निछावर कर दूं, तो ऐसी उत्कंठा होती है। रहे एक साथ करें मृदुहास है, फिर भी मिलन की उत्कंठा रहती है। एक साथ रह रहे हैं, मृदुहास कर रहे हैं, फिर भी मिलन की उत्कंठा रहती है। और अंतिम है मिलन होने पर भी अपरिचित रहना, जिसे पूर्वराग कहते हैं। हालांकि ये कई बार मिल चुके हैं लेकिन कई बार ऐसा लगता है इनको कि अरे हम पहली बार मिले हैं, हमने तो उसको देखा ही नहीं कभी। तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक लीला है, प्रेम सरोवर में एक लीला होती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, हम सुना रहे हैं, हम उसको सुना नहीं सकते। तो और अंतिम यहाँ पर कर रहे हैं कि राधा रानी की हंसी, राधा रानी की हंसी जो है इतनी सुंदर है, वो बड़ा खिलखिला के हंसती हैं। जब कोई खिलखिला के हंसता है तो बहुत सुंदर लगता है। कई लोग बड़ा बेकार सा हंसते हैं, वो इच्छा नहीं होती, कुछ सुनाने की भी इच्छा नहीं होती। जैसे एक बार मेरे गांव में एक लड़का था, उसको कुछ भी सुना दो ना वो ऐसे हंसेगा, बस चुप हो जा, इतनी गुस्सा आती थी, कुछ भी नहीं सुनाता था उसको कोई, उसको क्या सुना। लेकिन जब कोई खिलखिला के हंसता है ना तो लोग उसको सुनाते हैं, कोई भी घटना होती है, कोई चुटकुला होता है उसको सुनाते हैं। तो राधा रानी को जो है लोग सुनाते रहते हैं, अरे आज कृष्ण ने क्या किया, इसने क्या किया, सुनाते रहते हैं, क्योंकि राधा रानी बहुत खिलखिला के हंसती हैं, उनकी हंसी देखने के लिए लोग सुनाते रहते हैं। तो बहुत, और जब वो खिलखिलाते हंसती हैं तो राधा रानी के होठ जो हैं वो बिंब बिंब बल के समान अधर जो हैं बहुत लाल लाल होते हैं, और दांत जो होते हैं वो मोती की तरह चमकते हैं उनके, बिल्कुल शीशे की तरह चमकते हैं उनके। तो वो जो है, अब जो अधरों का जो लालिमा है वो मोतियों पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो राधा रानी के दांत कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, जैसे अनार का दाना होता है, अनार का दाना लाल लाल होता है, तो राधा रानी का इस तरीके से लाल लाल हो जाता है। तो बहुत ही उनका हंसना भी सब बहुत सुंदर लगता है। तो ये इस तरीके से जो है इनका ये हंसना है। और लास्ट में तो ऐसा जो है, ऐसे राधा रानी का जो हम अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, आप बोलो यार क्या ये क्यों बोल दिया ऐसा क्यों बोल दिया। तो ऐसा जो है, एक बार रामेश्वर स्वामी ने बोला, तो एक बार रामेश्वर स्वामी ने ऐसा बोला था कि जो है ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में राधा रानी की सेवा है। तो कई लोग बोले अरे ये कुछ ज्यादा ही गप मार रहे हैं। तो शिला प्रपा जी को जब बताया गया तो शिला प्रपा ने बोला हाँ रामेश्वर बिल्कुल ठीक कह रहा है रामेश्वर। तो एक बार उन्होंने व्याख्या करी कैसे कैसे है, क्योंकि राधा रानी क्या करती है, राधा रानी जो है अपना एक विस्तार करती हैं भक्ति देवी के रूप में, और वो भक्ति देवी क्या करती हैं इस भौतिक जगत में निर्माण करती हैं, इस भौतिक जगत में निर्माण करती हैं, और वो जैसी देखती हैं कि ये जीव जो है वो कृष्ण की ओर जाना चाहता है, तो वो जो है उसके भक्ति देवी उनके हृदय में प्रवेश कर जाती हैं और उसको तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो कृष्ण के धाम में नहीं चला जाता। तो राधा रानी ऐसा चाहती हैं कि सारे जीव जो है कृष्ण की सेवा में आए और अपने अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण की सेवा करें, तो ये राधा रानी का भाव होता है। और जब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है, हम लोग जब किसी को ग्रंथ देते हैं तो कृष्ण से मिलवाते हैं उसको, ये ग्रंथ जो है वो कृष्ण से मिलवाते हैं। और राधा रानी जब देखती है कि अरे ये जीव क्या कर रहा है, ये तो वही कार्य कर रहा है जो मैं करती हूँ जो मैं चाहती हूँ, तो ये मेरा कार्य कर रहा है, ये कृष्ण को ये जीवों को जो है कृष्ण से मिलवा रहा है, तो सबसे पहले क्या है ये इसको लेके आओ मेरे पास, ये सबसे मेरा प्रिय है। तो इसलिए जो है जो पुस्तक वितरण करते हैं वो जो है राधा रानी के सबसे प्रिय बन जाते हैं। तो कृष्ण ने जब सेवा की राधा रानी की तो राधा रानी जो है उनको पीड़ा दिया प्रसाद दिया है, तो ये सारी सेवा का फल है। तो सुबह से जो है भक्त लोग 3:30 से 4 बजे से जो है सेवा कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, अब इससे आपको फल मिलेगा प्रसाद। राधा रानी की